मेरा कहने का मतलब ये था कि इस साल 26 साल के बाद में जगन्नाथ जी ने नागार्जुन वेश किया, जो बहुत दुर्लभ है, बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। तो उसका फ़ोटो मुझे आया था, मैं आपको ना MLM ग्रुप पे भेज देता हूँ वो फोटोग्राफ। दूसरी बात थी, संगीता माता जी का प्रश्न था कि तुलसी विवाह शालिग्राम के साथ में कैसा हुआ। तो ये जो वृंदा देवी है ना, वो कई प्रकार की वृंदा देवी है। एक धर्मध्वज की कन्या है, एक केदार की कन्या है, एक वृंदा देवी स्वयं राधा रानी है। तो जो केदार की कन्या थी ना, केदार की कन्या थी, और एक थी धर्मध्वज, एक थी कुशध्वज, दो राजाओं के दो कन्याएं थी। एक कन्या का नाम था वेदवती, एक कन्या का नाम था वृंदा। दोनों को विष्णु के साथ विवाह करने की इच्छा थी, लेकिन एक को गोलोक वृंदावन में शाप मिला कि तुम्हारा विवाह राक्षस से होगा। उसका कारण क्या था? क्योंकि गोलोक वृंदावन में भगवान कृष्ण एक बार एक और गोपी है, विरजा गोपी, उसके साथ में मिल रहे थे। तो राजा रानी को पता चला कि भगवान दूसरे गोपी से मिल रहे, तो वहाँ उसको मिलने आई है देखने के लिए। तो भगवान ने उस कुंज के दरवाजे पर राजा रानी के भाई श्रीदामा को पहरेदार के रूप में रखा था। तो फिर क्या हुआ कि उसने रोका राजा रानी को कि नहीं मिलना है आपको। तो वो बोली नहीं नहीं मुझे पता है कि अंदर किसी और गोपी को मिल रहे हो, थोड़ा कोई नहीं यहाँ पर, चले जाओ आप। तो उसका ही भाई है, वो जाने को बोल रहा है, तो वो चली गई। फिर उसको खबर मिली कि वो वापस मिल रहे हैं कृष्ण वहाँ पर, वापस दोबारा वहाँ पर ही, वहाँ पर दोबारा सुदामा मिला। तब सुदामा को उसको गुस्सा आया बहुत, तो सुदामा को अपने भाई को राजा रानी ने उधर शाप दे दिया कि तुम राक्षस बन जाओ। तो श्रीदामा पृथ्वी पर बना शंखचूड़ नाम का राक्षस, शंखचूड़ा, वो श्रीदामा का ही अंश था। और श्रीदामा ने फिर राधा रानी को शाप दिया कि तुमने मुझे राक्षस बनने का शाप दिया है, तो तुमको मैं शाप देता हूँ कि तुम पृथ्वी पर जन्म लोगी और अपने प्रियतम से 100 साल विरह का अनुभव करोगी। तो इस तरह से उन्होंने दोनों को शाप दिए। फिर वो दोनों नीचे आए, और ये जो शंखचूड़ था इसका विवाह वृंदा देवी से हुआ, क्योंकि तो वृंदा देवी को राक्षस के साथ विवाह करने का शाप था। दोनों का विवाह हुआ, तो शंखचूड़ का वध जो है ना, वो भगवान कृष्ण ने किया। उस समय शंखचूड़ की पत्नी जो थी वृंदा देवी, उसके पातिव्रत्य से शंखचूड़ का वध नहीं हो रहा था। तो विष्णु ने शंखचूड़ का रूप लेकर उसका पातिव्रत्य भंग किया, और फिर युद्ध में शंखचूड़ का भी वध कर दिया। उस समय वृंदा देवी को ये पता चला कि विष्णु ने आकर मेरे, क्या हो गया इधर, कुछ गड़बड़ हो गया ना, क्या हो गया?
नहीं प्रभु जी, वी कैन सी यू, वी कैन हियर यू।
बट आई कांट सी एनीबडी।
वी कैन सी यू।
ओके ओके, बट आई कांट सी एनीबडी, दैट्स व्हाई आई वाज वाचिंग, क्या करूं। हाँ ठीक है, गुड गुड गुड। हाँ ओके, तो जब भी पता चला वृंदा देवी को कि शंखचूड़ को छल से मारा गया, तो विष्णु को शाप दे दिया उसने कि तुम पत्थर बन जाओ। तो विष्णु शालिग्राम शिला बने। तो विष्णु ने उनको शाप दे दिया कि मैं पत्थर बनूंगा, लेकिन तुम पौधा बनोगी, तुम्हारे चरणों में रहूंगा मैं। और इस प्रकार से फिर वृंदा देवी का विवाह शालिग्राम से हुआ। मतलब वेदवती को प्रभु रामचंद्र तुरंत प्राप्त हो गए, लेकिन वृंदा देवी को चक्कर काटना पड़ा। राक्षस के विवाह करने के बाद राक्षस का वध हुआ, फिर शालिग्राम के रूप में भगवान आए, फिर वो पौधा बनी तुलसी देवी, फिर कार्तिक एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक 5 दिन में कभी भी तुलसी का विवाह हो सकता है, होता है। ये वृंदा देवी का शालिग्राम का विवाह का कहानी है। इसकी और एक लंबी कहानी भी है, दूसरी कहानी है, वो ये है कि वृंदा देवी का विवाह जालंधर से हुआ। और जालंधर जो है ना वो इतना पराक्रमी था कि कोई देवता उसका पराभव नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि वृंदा देवी बड़ी पतिव्रता थी, उसकी पत्नी, उसके पतिव्रता बल के कारण कोई भी देवता जालंधर को मार नहीं सकता था। तो फिर विष्णु ने जालंधर का रूप लिया और वो वृंदा देवी के घर पे गए और उसका पतिव्रत्य भंग किया उसने। और जब पतिव्रत्य भंग किया तो उस समय शंकर जी को आदेश दिया, आप त्रिशूल लेकर जाओ और युद्ध करो। तो सब देवता भी गए, शंकर जी भी गए, और जो त्रिशूल पहले कभी चला नहीं जलंधर के ऊपर, उस दिन पतिव्रत्य भंग होते ही त्रिशूल जलंधर के गले में घुस गया और गला काट के वो अलग कर दिया उसको। तो वो जो गला जो है ना, वो गले के रूप में जो था जलंधर, वो बहुत आश्चर्य हो गया उसको कि कैसे हो गया, मेरे पति का, पत्नी का क्या पतिव्रत्य भंग हो गया क्या? तो पूछने के लिए वो सर है ना, सर त्रिशूल के साथ ही घर पे आया और पुकारते पुकारते आया, वृंदा वृंदा कहाँ हो तुम, क्या हो गया? तो तब उस समय जलंधर के रूप में विष्णु उसके शयन गृह में थे। तो शयन गृह में एक पति है और बाहर से पति की पुकार सुनाई पड़ रही है, वृंदा वृंदा करके। तो वो बाहर आ गए देखने के लिए कहाँ से आवाज आ रही। देखते हैं तो त्रिशूल का लटका हुआ सर जो है जालंधर का, वो पुकार रहा है, वृंदा क्या हो गया, वृंदा क्या हो गया। उतने में विष्णु भी बाहर आ गए जालंधर के रूप में। तो उसने ना जलती हुई, मतलब क्या कहते हैं, लाल आंखों से देखा कि तुम कौन हो। तो समय विष्णु को अपना रूप में प्रकट होना पड़ा। तब वृंदा देवी को सब पता चला कि मेरे मेरे लिए छल किया गया है, विष्णु ने अपना पातिव्रत्य भंग कर दिया है। तो उस समय वो समझ गई। तो उसने क्या किया, विष्णु को शाप दे दिया कि तुम पत्थर बन जाओ। तो विष्णु ने उसको शाप दिया कि तुम पौधा बन जाओ। तो उस जन्म में फिर वो जो त्रिशूल से लटका हुआ सर था ना, उसको गोद में लेकर वो सती चले जाती है, अपने आप को भस्म करती है, और फिर अगले जन्म में तुलसी का पौधा बन के आती है। और भगवान तो पत्थर के रूप में है ना, शालग्राम के रूप में, तो उनका विवाह होता है। वो विवाह हम लोग संपन्न करते हैं कार्तिक एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक। हरे कृष्णा। और तीसरी कहानी यह है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन यशोदा माई गर्भवती हुई थी, गर्भधारणा उसकी इस दिन हुई थी कृष्ण भगवान के लिए। देवकी किसी अलग दिन पे मथुरा में हुई थी गर्भवती, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन यशोदा नंदगांव में गर्भवती हुई थी ओरिजिनल कृष्ण के साथ। फिर जब देवकी के गर्भ का कृष्ण लेके आए वसुदेव जी, वो कृष्ण यशोदा के कृष्ण के साथ में विलीन हो गया। यशोदा के गर्भ में दो 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 व्यक्ति आए, एक योग माया और एक कृष्ण, ओरिजिनल कृष्ण, दोनों ट्विंस यशोदा के गर्भ में समाहित हुए कार्तिक पूर्णिमा के दिन, भगवान के वचन के अनुसार जो भगवान ने पृथ्वी देवी को गोलोक वृंदावन में दिया था। आपको समझ में आ रहा है, पृथ्वी माता गो माता बनकर गई थी, फिर भगवान ने वादा किया था मैं आऊँगा। तो वो जो वादा था कि जब तुम सातवें गर्भ को देवकी के गर्भ से निकाल कर रोहिणी के गर्भ में स्थापन कराओगी, तो इस सेवा के लिए तुम्हें वरदान मिलेगा कि तुम मेरे साथ में मेरी माँ के गोद में रहोगी, मतलब गर्भ में रहोगी। इसलिए यशोदा का कार्तिक पूर्णिमा के दिन ट्विन प्रेगनेंसी हुआ और वो दोनों साथ में रहे गर्भ में। और जब जन्म हुआ तो ट्विन्स हुए। तो जो कृष्ण को वसुदेव लेकर आए थे देवकी कृष्ण को, वो कृष्ण यशोदा कृष्ण में विलीन हो गए। अब तो कितने बचे, तीन के दो हो गए ना। तो आदेश क्या था, जो लड़का वहां पर है उसको छोड़कर लड़की को लेके आओ। तो लड़की को लेके गए वो, और लड़का रह गया पीछे यशोदा के पास। और लड़की आकाश में गई, देवी बन गई, कंस को धमकी दिया उसने और वो अदृश्य हो गई। तो इस तरह से कार्तिक पूर्णिमा के दिन यशोदा देवी की गर्भधारणा हुई। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या हुआ बताओ, रासलीला भी हुई कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान की तरफ से। और क्या हुआ, शंकर भगवान ने त्रिपुरा नाम के राक्षस का वध भी किया, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। तो त्रिपुरा जो था ना, वो त्रिपुरा मतलब तीन महल आकाश में, त्रिपुरा हवा में तीन महल थे, और राक्षस था वो एक्चुअली। वो तीन महल का रूप धारण करके आकाश में था और उसके खिड़कियों में से बाण निकलते थे, अनंत बाण निकलते थे। तो इसका वध किसको करने को नहीं होता था, तो फिर भगवान विष्णु ने शंकर जी को त्रिशूल दिया, पशुपतास्त्र दिया, और वो त्रिशूल लेकर शंकर भगवान पंडरपुर आए। आप लोग इधर उधर बातें कर रहे हो, सुनने रहे हो, बाद में फिर दोबारा बोलोगे कौन सी कहानी थी वो। शंकर भगवान विष्णु से त्रिशूल लेकर आए पृथ्वी पर, पंडरपुर में आए, और एक पांव जमीन पर गाय के ऊपर और एक पांव जमीन पर, एक पांव गाय के ऊपर ऐसा रख के उन्होंने त्रिशूल से तीन पुर को नष्ट कर दिया। वो जो युद्ध हुआ उसमें शंकर भगवान को बहुत पसीना आया, वो पसीना है भीमा रिवर, भीमा रिवर, भीमा रिवर बनी, भीमा रिवर बनी आगे जाकर चंद्रभागा रिवर। चंद्रभागा रिवर जो है ना, उसका पहला नाम था भीमा, क्योंकि भीमा शंकर पहाड़ पर उसका उगम हुआ था, और भीमा शंकर पहाड़ पर ही युद्ध हुआ था भगवान शंकर का और त्रिपुर का। तो जब भयंकर युद्ध हुआ तो भगवान शंकर को जो पसीना आया वो नदी के रूप में प्रवाहित हो गया। जब वो दक्षिण दिशा में टर्न हो गया तो उसका नाम पड़ा चंद्रभागा। तो वो चंद्रभागा नदी शंकर जी का स्वेद जल है, और शंकर भगवान ने त्रिपुरा को मारा इसलिए उनका नाम पड़ा त्रिपुरारी। और आज के दिन मारा मतलब कार्तिक पूर्णिमा के दिन, इसलिए उसका नाम पड़ा त्रिपुरारी, त्रिपुरारी पूर्णिमा। ऐसे ये इस दिन का महत्व है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो कितना डिफिकल्ट है, 20 मिनट भी एकाग्र होकर सुनना कितना डिफिकल्ट है। एक को नींद आ रही है, एक को बात करना है, एक को इधर देखना है, एक उधर देखना है। कलयुग में इतना आसान कर दिया है, लेकिन फिर भी वो कितना मुश्किल है। वो जो आसान है वो हम लोग मुश्किल कितना बना देते हैं उसको, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना वो बहुत जगह पर बटा हुआ है, एक जगह पर वो टिक नहीं सकता है। तो अभी मुझे संगीता माता जी बताएगी क्या करना चाहिए उसके लिए। अगर आप इस समस्या को स्वीकार करते हो कि समस्या है, तो आपका उपाय क्या है मुझे बताओ, बाकी लोग भी सुन सकेंगे उसको। गोलोक बताओ, आप भी बहुत व्यस्त थे कथा के समय, बताओ इसके लिए आपके पास क्या उपाय है। और रति के लिए को बहुत नींद आ रही थी जब पता चल रही थी। ओके बताओ बताओ, ज्यादा समय नहीं अपने पास, प्लीज टेल मी।
कृष्णा सर,
यस
गूगल मीट बंद करके फिजिकल मीटिंग डिस्टेंस में स्टार्ट कर सकता है।
फिजिकल मीटिंग ना,
हाँ
और फिजिकल मीटिंग में नींद आए तो क्या करना,
उसमें नींद नहीं आएगा। खड़े होने
तो
खड़े होना
तो
चाहिए।
फिजिकल मीटिंग में मैं फटके दे सकता हूँ ऐसा
फिजिकल मीटिंग में खड़े होना चाहिए थोड़ी देर, एंड देन अगेन सिट डाउन।
तो इसमें भी खड़े हो सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको, इसमें किसने रोका है आपको खड़े होने के लिए, खड़े हो सकते हैं जहां पर भी है। लेकिन देखो कम से कम जैसी ने आंसर तो दिया, आप लोग चुप बैठे बैठ के खड़े हो उधर, क्या कर रहे हो। हाँ क्या है ना, देखो अभी हम लोग चाहे कुछ भी हो, किसी भी देश से हो, प्रदेश से हो, महाराष्ट्र से हो, इधर से हो, पंजाब से हो, कौन सी जाति के हो, धर्म के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेसिकली ना स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होना चाहिए, ये भक्ति वेदांत अस्पताल का एक पर्पज़ है कि हमारे जितने भी कर्मचारी और पेशेंट हैं वो किसी भी प्रकार से अपने अपने धार्मिकता में उनका प्रोग्रेस होना चाहिए। वॉट एवर यू आर फॉलोइंग यू मस्ट हैव स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, दैट इज वॉट इज एक्सपेक्टेड। बट मेरा स्पिरिचुअल केयर, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होना चाहिए ये निश्चय मुझे ही करना है, आपके लिए मैं नहीं कर सकता, या मेरे लिए आप नहीं कर सकते, मेरे लिए मुझे ही निर्णय लेना पड़ेगा कि मुझे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना है, और अगर मुझे करना है तो मैं उसको करा सकता हूँ, और मुझे नहीं करना है तो आप मेरे लिए नहीं कर सकते हो, ना मैं कर सकता हूँ ना मेरे लिए आप कर सकते हो। जैसे मुझे किसी ने पूछा उस दिन, नाम नहीं लूंगा, कि माँ प्रभु जी वो माता जी है ना वो अभी एकदम कैंसर में बहुत ज़्यादा कोमा में चली गई है, तो वो जप नहीं कर पा रही है, तो मैं उसका 16 माला करूँगी तो उसको पहुँच जाएगा क्या? मैंने कहा नहीं पहुँचेगा उसको, वो उसको ही करना पड़ेगा। आप प्रार्थना कर सकते हो, प्रार्थना का बेनिफिट मिलेगा उसको, लेकिन 16 माला का नियम है ना वो आपको ही करना पड़ेगा, उसको ही करना पड़ेगा। वो आपको टीबी हो गए तो दवा में खा सकता हूँ क्या आपके लिए? बोलो आप, सब नर्स हो, नर्स डॉक्टर सब लोग बैठे उधर, अगर मुझे टीबी हो गया तो मैं तो मेरे लिए दवा खा सकते हो क्या आप? नहीं खा सकते हो। वो एक ही थे गजानन बाबा, वो गांजा पीते थे तो चढ़ती किसी और को थी ऐसा था वो हमेशा चमत्कार करते थे, वो गांजा पीते थे, लोगों को नशा आती थी सामने बैठने वाले लोगों को, यानी वो अलग बात है, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। तो कहने का मेरे को मैसेज आपको ये है कि कार्तिक महीना समाप्त हो गया, अभी देखते देखते 2 दिन बच गए, अभी आज त्रयोदशी है, 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, फिर 1 साल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, जिंदा भी रहना पड़ेगा 1 साल तक आने के लिए वापस। जिंदा रहेंगे तो अगला कार्तिक मिलेगा, नहीं तो फिर हरिबोल हो जाएगा बीच में। तो ऐसा समय बीतते जा रहा है, कितना कार्तिक आए कितना कार्तिक गए, हम लोग वहीं रह गए, नदी का पानी बहता गया हम वहीं पर खड़े रह गए। तो हम लोगों को गंभीर होना बहुत ज़रूरी है, स्पिरिचुअल लाइफ को गंभीरता से नहीं लेंगे ना तो पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरा शयनम, बार बार यहाँ पर माता के गर्भ में आना पड़ेगा, माता के गर्भ का अंधकार सहन करना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा, फिर छोटे रास्ते से बाहर निकलना पड़ेगा बहुत तकलीफ उठा के, फिर वही टट्टी पेशाब, वही बचपन, वही रोना धोना, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, हा? ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, प्रभु दोबारा नहीं मिलेगी ये, और पता नहीं क्या मिलेगी आगे, अभी हमको गंभीर बनना पड़ेगा इसके लिए। लाइफ इज वेरी शॉर्ट, और इस शॉर्ट लाइफ के अंदर बहुत सीरियस बनना पड़ेगा हमको, मंजिल बहुत दूर है अभी। अभी हमारा मन अगर परिवार इसमें उसमें पड़ा ना, आज सुबह में विचार कर रहा था एक बात का, अभी मैं आपको बता देता हूँ, सुबह में इस बात पर विचार कर रहा था, एक है प्रेम और दूसरा है आसक्ति, दोनों में से कौन सा होना चाहिए हमारा बताओ? ओके तो शैलेश भी बोल रहा है, नारद मुनि बोल रहे हैं भी प्रेम, आप भी बोल रहे हैं प्रेम, तो मुझे बताओ कि आसक्ति क्यों नहीं होनी चाहिए और प्रेम क्यों होना चाहिए? बताओ, आपने ऐसा वो काटा और छापा नहीं मारा आपने, या तो काटा सच होगा तो छापा सच होगा, ऐसा नहीं है, या तो हेड और टेल, ऐसा नहीं है वो, इस तरह टॉस नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताओ।
आसक्ति बहुत तकलीफ देती है बाद में।
नहीं क्या करती है एग्जैक्टली, क्या करती
है वो, उसके अंदर ही हम लोग वो आसक्ति के अंदर ही क्या बोलते उसको, वही वही 10 बार सोच रहे थे, प्रेम से बात करेंगे तो फटाफट एक एपिसोड हो सकता है इससे, लेकिन आसक्ति नहीं होना चाहिए बिल्कुल कोई भी चीज के। आसक्ति
देखो, अभी मेरी बात सुनो, आसक्ति होने से दोबारा आने की शक्ति हो जाती है, समझे आपको? आसक्ति होने से दोबारा आने की शक्ति हो जाती है आपके ऊपर, यू आर फोर्स टू कम बैक अगेन, इसलिए आप प्रेम करो आसक्ति मत रखो। तो हमारा कैसा है, प्रेम के नाम पे आसक्ति है परिवार पर, बीवी पर है, पति पर है, बच्चे पर है, ये है, बहू है, बहू का बेटा है, पोता है, पोती है, सबके पर आसक्ति है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी पोजिशन है, हमारा घर में क्या पावर है, बाहर क्या पावर है, सब में हमारी आसक्ति है, ये आसक्ति हमको दोबारा लेके आएगी, वो शक्ति करेगी। तो प्रेम करना पाप नहीं है, प्रेम करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन प्रेम के साथ में आसक्ति हो गई तो वापस आना पड़ेगा, इसलिए दुनिया की आसक्ति छोड़कर भगवान पर प्रेम करना चाहिए, और भगवान के साथ लोगों पर प्रेम कर सकते हैं लेकिन आसक्ति नहीं होना चाहिए। जैसे मेरा मेरे बीवी पर प्रेम है लेकिन मैं आसक्त हो गया तो दोबारा आऊंगा, ये बात समझ लेना। बीवी पर, बच्चों पर, परिवार पर, जॉब पर प्रेम करना बुरी बात नहीं है, आसक्त नहीं होना है, आसक्त हो गए तो वापस आना पड़ेगा, ये मेरा सुबह का विचार है आज का। मॉर्निंग मेडिटेशन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आसक्ति को छोड़ दो और भगवान पर प्रेम करो, और भगवान पर प्रेम करने से अपने आप आपको अपने काम पर प्रेम होगा, अपने परिवार पर प्रेम होगा, सब पर प्रेम होगा आपका, लेकिन आसक्ति नहीं होगी। दूसरी बात, दूसरा चिंतन बताता हूँ, सेकंड मेडिटेशन, वो ये है कि क्या चल रहा है तुम्हारा, पहले संखे बंद करो आवाज, तुम्हारा ही है और किसका है, तुम्हारा ही तो घंटी बज रही है। दूसरा चिंतन यह है कि हम लोग दिल दुनिया को देते हैं और भगवान के विषय में दिमाग लगाते हैं, भगवान है क्या, है तो किधर है, दिखना चाहिए ना, नहीं दिखेगा तो विश्वास कैसे रखेंगे उसके ऊपर। देखो मेरी बीवी है तो सामने खड़ी है, वो आई कैन बिलीव, भगवान किधर है, भगवान दिखना चाहिए ना, ऐसा तर्क करते हैं, तर्क मतलब बुद्धि लगाते हैं उसके ऊपर, और दुनिया के विषय में चर्चा नहीं करते हैं। बस में बैठे तो कंडक्टर को पूछा नहीं लाइसेंस किधर है तुम्हारा, उन्हें कभी पूछा, कितनी बार फ्लाइट में बैठे, कितनी बार जाके पायलट को पूछा आपने लाइसेंस किधर है आपका, पूछा क्या एक बार भी, कितनी बार ट्रेन में यात्रा की आपने, कभी मोटरमैन को मिले क्या आप कि तुम्हारा लाइसेंस का कितना एक्सपीरियंस तुम्हारा है, तुम बोनाफाइड मोटरमैन हो कि नहीं हो, कोई ऐरा गैरा खड़ा कर दिया ट्रेन के अंदर चलाने के लिए, इतनी सब बातें आप बिना सोचे कर लेते हो, और भगवान का विषय आएगा तुरंत क्या करते हो, भगवान तो दिखा दो मुझे किधर है भगवान तुम्हारा। लेकिन तुमने कितनी बार जाके मोटरमैन को देखा है ट्रेन में चलते हुए, देखा है कभी, एक बार भी पूछा है क्या, अरे बाप रे 20 घंटे की यात्रा है मेरी, 20 घंटे की यात्रा में मैं एक बार तो देखना चाहूँगा कौन है वो मोटरमैन तो मुझे चला के लेके जा रहा है, अभी मैं सोने जाना हूँ रात को, तो सोने के समय मरूंगा कि जिंदा रहूंगा, देखने को लिए मेरे को मोटरमैन का चेहरा देखना जरूरी है, कहीं सोचा क्या आपने आज तक ऐसा, नहीं। लेकिन भगवान को बोलते अभी दिखा दो भगवान को, इसका मतलब क्या है, भगवान के विषय में दिमाग लगाते हैं और दिल दुनिया को दे देते हैं। लेकिन करना क्या चाहिए, दिल भगवान को देना चाहिए और दुनिया के विषय में परख परख कर काम करना चाहिए, बुद्धि लगाकर परख के काम करना चाहिए। बिफोर यू परचेस एनीथिंग 10 बार देखो उसके अंदर गौमांस तो नहीं है, उसके अंदर चिकन तो नहीं है, उसके अंदर अंडा तो नहीं है, वो देखते नहीं हम लोग। तो आपके लिए संदेश क्या है कि दिमाग से दुनिया को परखो और दिल भगवान को दे दो, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। ओके, कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। हरिप्रिया बोलो।
हरे कृष्ण प्रभु जी, एक क्वेश्चन है कि जो अटैचमेंट है और प्रेम है, इन दोनों के बीच में लाइन क्या है प्रभु जी?
लाइन श्रद्धा की है ना, लाइन विश्वास की है। विश्वास यह है कि दुनिया हमको छूटने वाली है, भगवान हमको छोड़ने वाले नहीं है। और एक उसका उत्तर यह ऐसा है कि ये आसक्ति और प्रेम ये हम लोग ही बनाते हैं, आसक्त भी हम लोग हो जाते हैं और प्रेम भी हम ही करते हैं, तो हमको तय करना है कि हमको क्या करना है। तो इसका और एक उत्तर है, उसके बीच में क्या है, आपका स्वातंत्र है, यू आर इंडिपेंडेंस इज देयर इन बिटवीन टू चूज whether to love or whether to be attached, ये आपका चॉइस है, ये आपका चॉइस जो है वो उसके बीच में है। आपको अपना चॉइस करना है कि मुझे दिल भगवान को देना है, दिमाग दुनिया को लगाना है, मुझे भगवान पर प्रेम करना है और दुनिया से आसक्त नहीं होना है, ये आपका चॉइस, आपको एग्जीक्यूट करना चाहिए, अमल में लाना चाहिए। हरे कृष्णा, और बताइए सुचित्रा मैडम, प्रश्न है आपका कोई? यस, और किसका?
जो आपने कहा ना कि प्रेम से ही रहना चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए, तो इसमें थोड़ा और इलैबोरेट आप करोगे क्या?
मतलब आपके अभी आपके घर में पति है, आपके बच्चा है आपका, है ना, आप उन पर प्रेम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पति है, बच्चा है, आपके माँ है, आपकी बहन है, आपका प्रेम है उनके ऊपर। लेकिन वो जो आपका प्रेम है वो आपको इस दुनिया में वापस लाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। ये आपको देखना है कि आपको उनका ड्यूटी करना है सब कुछ प्रेम से। जब तक आप हो वो हैं, आप उनका खाना बनाओ, उनका प्रेम से बात करो, उनका क्षेम कुशल देखो, उनका कल्याण देखो, उनकी चिंता करो, सब कुछ करो। लेकिन वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपको वापस लाएगा इधर,
अटैचमेंट
नहीं होना चाहिए। आप ड्यूटी करो अपना। जैसे मेरी बेटी है, मेरी बीवी है, वो बहुत प्रेम करता हूँ उनके ऊपर मैं। लेकिन कल मुझे भगवान ने बुलाया ना, तो झट से भगवान को रिस्पॉन्स लेके चला जाऊंगा मैं। हाँ, जब भगवान बुलाएंगे तो बोलूंगा नहीं, रुको रुको रुको, ये मेरा काम करके आता हूँ अभी। तो फिर फंस गए आप लोग, क्योंकि जब भगवान बुलाते हैं ना, तो हम लोग स्वार्थी नहीं है कि उनको रिस्पॉन्स लेके चले गए। भगवान जब बुलाते हैं तो हमारे सबकी व्यवस्था करते हैं भगवान। भगवान सबकी व्यवस्था करते हैं जो छोड़ के जा रहे हैं उसको आप।
हाँ, सही बात है।
जो मैं चला गया ना, तो मेरे पीछे जो मेरी जिम्मेदारी है वो भगवान निभा देते हैं। हाँ, ये हमको विश्वास होना चाहिए। यमुनाचार्य थे, यमुनाचार्य वो यमुनाचार्य नहीं, नाम जाने दो, एक साधु थे। वो साधु पता नहीं क्यों उनका विवाह हो गया, ठीक है ना, विवाह हो गया तो वाइफ प्रेग्नेंट हो गई, और वाइफ प्रेग्नेंट हो गई तो प्रेगनेंसी में गुजर गई और बच्चा का डिलीवर करके चली गई वो। अब बच्चा डिलीवर हो गया, जीवित बच्चा है, और अपना होता है ना हॉस्पिटल में कभी वो पीपीएच होता है, कुछ होता है ना, तो वैसे वो उसकी पति का देहांत, पत्नी का देहांत हो गया है ना, मतलब जेस्टेशनल डेथ हो गई माँ की, और इन्फंट बेबी अलाइव। तो बोला अभी मैं कहाँ फंस गया, अरे एक तो शादी करके मैं फंस गया, ऊपर से अभी बीबी चली गई, बच्चा लेके अभी मैं क्या करूँ उसको। तो वो बच्चे को लेकर बैठा है पेड़ के नीचे, ठीक है, और सोच रहा है अभी क्या करूँ। तो उतने में क्या हुआ, एक चिपकली ने एक बालक चिपकली को जन्म दिया, डिलीवर किया। तो बालक चिपकली ना पेड़ से नीचे गिर गया, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं था उसको उधर, वो उसको प्रसूति की वेदना हो गई, तो बच्चा डिलीवर हो गया, बाहर निकल गया, लेकिन बच्चे को नीचे पकड़ने के लिए कुछ था नहीं, तो सीधा नीचे गिर गई। तो बच्चा अभी जन्म हो गया चिपकली का, वहां से एक मक्खी आई, तो चिपकली के बच्चे ने मक्खी को खाया तुरंत। अच्छा। तुरंत इंस्टेंटली, अभी तो जन्म हुआ उसको कुछ सिखाया भी नहीं कुछ, अभी तो गिरी है माँ के पेट से वो। तो चिपकली का बच्चा ने तुरंत वो छोटी मक्खी खा ली, तब इसको लगा अरे भगवान ने इतने छोटे जीव को भी ट्रेनिंग दे के रखा है, क्या करना है कैसे करना है, तो वाई शुड आई बॉदर। तो वहां पर छोड़ के चला गया वो बालक को, वहां रखा और चला गया सीधा, निकल के भगवान की भक्ति में निकल गया। थोड़ी देर के बाद में एक राजा वहां से आया, मेरोनुक में आया, जुलूस में आया, और वो जा रहा था, उसको पुत्र उत्र कुछ था नहीं, लेकिन वो कहीं जा रहा था अपने काम के लिए, तो बच्चे के रोने की आवाज़ आई। तो उसने अपना जुलूस रुकवाया और पूछा कौन है, कौन रो रहा है, देखो कौन रो रहा है। तो उसका मंत्री गया और देखा कि अरे अकेला बच्चा, अभी जस्ट जन्म हुआ बच्चा पड़ा है, कोई माँ नहीं, पिताजी नहीं, कोई साइड में है ही नहीं कोई, वो बच्चा रो रहा है, तो क्या करें। राजा बोला चलो ले जाओ उसको, लेके आओ, मैं संभालूंगा उसको। तो वो पुत्र को राजा ने उठाया और राजकुमार बन गया वो। वो कौन है, यमुनाचार्य। वो कौन है, यमुनाचार्य। ही बिकेम यमुनाचार्य, द फेमस सेंट। मैं लेक्चर में आई हो, तो ये कहानी क्या बताती है, वो पिताजी गैर जिम्मेदार नहीं था, वो भगवान के लिए चला गया, वो मजा मारने के चला नहीं गया। तो कुछ ही क्षणों में भगवान ने उसके बालक की व्यवस्था कर दी। बालक रास्ते पर कोई कुत्ते ने नहीं खाया उसको, मरने गया बालक। अक्सर क्या होता है, जब बालक अकेला मिलता है तो कुत्ते घूमते हैं उसके आसपास, बिल्ली घूमती है, फिर खा जाते हैं उसको, है ना। अपने हॉस्पिटल में जब वो बच्ची गुम हो गई थी मीरा रोड पर, तो उसके आसपास 6 कुत्ते घूम रहे थे। एनआईसीयू से बच्ची गई थी ना हमारी एक, हाँ। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि इस दुनिया में जिसको भगवान पे दिल लगा है ना, उसकी सारा क्षेम कुशल भगवान संभालते हैं। तो वो बच्चा किधर भी रास्ते पर नहीं पड़ा, वो राजकुमार बना। हाँ,
थैंक यू सर फॉर इलैबोरेट।
तो इसका मतलब ये नहीं कि कल से हमारे बच्चे को छोड़ के अब चले जाएं, ये उसका परपोट नहीं है। परपोट ये है कि आप चिंता मत करो कि आप जाने के बाद बच्चे का क्या होगा, कौन संभालेगा उसको, ये चिंता मत करो। आपकी मृत्यु होती है तो बिंदास भगवान से प्रेम करते चले जाओ आप। अगर चिंता करेंगे तो आसक्ति होगी तो दोबारा लौट के आएंगे उसी के चक्र में। अभी मैं आपको एक और कहानी बताता हूँ, एक सुंदर
हाँ
कहानी है।
सर
हाँ एक सुंदर कहानी। आपका पीछे का लाइट बंद कर दो, बहुत लाइट है आपके पीछे, बहुत ज्यादा लाइट है पीछे। हाँ बस थैंक यू। तो वो कहानी ऐसी है कि डॉक्टर राठौड़ के ना गांव में एक घर है, और मैं कभी कभी घूम घूम के उनके गांव में, वो घर पे बाहर आंगन में जप करने को बैठा था। एक बार बहुत पुरानी बात है, जब मैं उनके गांव में गया था तो घूमते घूमते मॉर्निंग वॉक में कुछ समय उनके आंगन में बैठ के मैंने जप किया था। और लोग दो पति पत्नी जो है ना, वो बड़े प्रेम से दरवाजा खोल के देखा तो बाहर कोई प्रभु जी बैठ के जप कर रहे हैं। थोड़ा उनको आनंद हो गया, प्रभु जी घर पे आइए दूध पीजिए, तो बोला ठीक है पिला दो दूध। मैंने दूध पिया था उनके घर पे, फिर मैं लौट के आया था। तो वो जो कपल है ना, अभी लास्ट 6 महीने के अंदर क्या हुआ कि पिताजी मतलब प्रभु जी जो आदमी थे ना, वो बेड रिडन थे, एकदम बिस्तर पे थे, और उनकी औरत भी बहुत बुढ़ी थी। तो एक दिन सुबह उठने को दरवाज़ा खोलने को आई वो, तो उसको दरवाज़ा खोलते खोलते हार्ट अटैक आया और उधर ही गिर गई और ख़त्म हो गई वो। समझ में आया सीन कैसा है? उसी घर में जो आदमी है वो बेड रिडन है, उसकी बीवी थोड़ी सी मोबाइल है, वो बाहर जाके दरवाज़ा खोलने का प्रयास करती है तो उसको हार्ट अटैक आके वो मर जाती है। अभी वो जो बिस्तर पे आदमी है वो चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ इसको, उसका आवाज़ सुनकर लोग आते हैं, दरवाजा तोड़ते हैं और वो देखते हैं कि वो बीवी गुजर गई है उसकी, तो उसका वो क्रियाकर्म करना शुरू कर देते हैं। तो ये बोलता है कि नहीं नहीं उसका कुछ नहीं करना है आपको, दाह संस्कार हो गया। फिर बोलते हैं कि वो तीसरी चौथी और वो विधि नहीं करना है कुछ भी, क्योंकि जैसे ही विधि करेंगे ना वो मुझसे जुदा हो जाएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगी। हाँ पिंडदान क्यों करते हैं? ताकि यहाँ का जो रिश्ता है वो कट करके अभी आगे का जर्नी के लिए फ्री करते हैं आपको। तो उसने तीसरी करने के लिए मना दिया, चौथी करने के लिए मना कर दिया, 9वीं तिथि का भी विधि करने को मना कर दिया, और अभी श्राद्ध का समय आ गया 12-13 दिन का, वो भी करने को मना कर दिया। लेकिन 12-13 के दिन में उसकी भी देहांत हो गया, 12th-13th day पे जो श्राद्ध आया उसका बीवी का, उस दिन पति का देहांत हो गया। वो कहते हैं कि मैं उसको छोड़ नहीं सकता, ऐसे बोल के उसने हर रोज उसके हर एक विधि को बना करते गया वो, और उसके लास्ट विधि के दिन वो खुद भी मर गया। तो फिर दोनों के विधि साथ में हो गए और दोनों चले गए आगे। इसका मतलब क्या था? उसका अपने बीवी के साथ में इतनी आसक्ति थी कि उसको जुदा होने की इच्छा नहीं थी, इसलिए वो भी गुजर गया उसके साथ में आगे जाने के लिए। तो नेक्स्ट लाइफ में भी साथ में रहेंगे, इतना आसक्ति था। तो ये डेंजरस चीज़ है, ये अपने को नहीं करना है। अभी फिर डॉक्टर क्षमा के घर की कहानी सुनो। उसके घर में ना एक दादी थी पुरानी, मतलब एकदम कजिन कजिन ऐसे डिस्टेंट रिश्ते में थी, जो कई बार बीमार पड़ चुकी लेकिन ठीक हो गई, कई बार बीमार पड़ चुकी वो ठीक हो गई। 105 साल की हो गई वो, ओके। और उसकी एक भतीजी है जो 81 साल की थी, 81 ईयर की थी, ओके। एकदम ध्यान से सुनो, एक घर है उसमें एक फूई है, फूई मतलब आत्याबाई है, एक आत्याबाई है और एक आजीबाई है। आत्याबाई 81 की है और आजी 105 की है, ओके। दोनों एक घर में रहते हैं। तो 81 वाली को कोरोना पॉजिटिव हो गया, दोनों साथ में थे, तो 81 का पॉजिटिव निकला, लेकिन 105 का टेस्ट किया तो वो निगेटिव निकली। हाँ तो 81 को हॉस्पिटल में एडमिट किया और हॉस्पिटल में 81 गुजर गई कोरोना में गुजर गई। उसके बाद में कुछ दिन 105 वाली भी गुजर गई।
तो दोनों एकदम ये थे,
असक्त थे, जो इतनी बीमारियां होकर भी मर नहीं पाई, वो 81 के डेथ होने के बाद वो भी गुजर गई तुरंत। हाँ ये खेल है। दो कहानियां अभी एकदम कल के बाद कल की डिस्कस हुई। ऐसा है, हम एक दूसरे से इतने आसक्त हैं, उनके पीछे पीछे जाते हैं हम लोग जन्म लेने के लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाएंगे, 100-100 बार हमने जन्म लिए, यही हमारी कहानी है। इधर ही आना है, इधर ही मरना है, इधर ही सड़ना है, इधर ही दुख भोगने के लिए बार बार आना है। तो आज हमारा जन्म हो गया, तो हमारा लास्ट जन्म में जो भी थे वो सब कट हो गया, नाश रिश्ता हमारा होना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या है उन्हीं लोगों के बीच में बार बार आते रहते हैं, अलग अलग रूप धारण करके, कभी आदमी बन के आते हैं, कभी औरत बन के आते हैं, वहीं पर उन्हीं लोगों के बीच में बार बार लगातार आते रहते हैं आसक्ति की वजह से। हाँ, घूमते रहते हैं, गोल 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 घूमते रहते हैं, कभी ये रूप धारण, कभी गोरा रंग, कभी काला रंग, कभी बीवी, कभी पति बनकर आते हैं, कभी बच्चा बनकर आते हैं, उसी के बीच में घूमते रहते हैं, कर्मों का खेल पूरा खेलते रहते हैं इसके अंदर। उसमें हमको बाहर निकलना है उसमें से, और बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, भगवान पर प्रेम करना है और कुछ नहीं करना है। नो अदर वे, नो अदर वे, नो अदर वे, नो अदर वे, ओनली लव, लव विद गॉड। ठीक है, जय जय श्री राधे श्याम। अभी कार्तिक समाप्त हो रहा है, विचार कीजिए उसके ऊपर मैं क्या बोल रहा हूँ, तो कुछ अच्छा रहेगा।
थैंक यू,
थैंक यू वेरी मच।